जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
श्रृंगवेरपुर पड़ता है गंगा जी के तट पर। तो भगवान वहां पहुंचे, वहां निषाद रहते थे उस गांव में, और भी लोग थे। तो निषादों के स्वामी थे वे महाराज दशरथ के बहुत प्रेमी थे। अकस्मात उन्होंने देखा श्रृंगवेरपुर के पास हल्ला हुआ कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र यहां आ रहे हैं और ऐसी ऐसी घटना है, उनकी सौतेली मां ने उनको वनवास का वर मांगा। तो निषाद राज अपने मंत्रियों के साथ गए भगवान से मिलने के लिए, और भगवान को इन्होंने प्रणाम किया तो भगवान उठाकर इन्हें हृदय से लगा लिए और बहुत ही भाग्य की प्रशंसा करने लगे। कहो मेरा कितना भाग्य है, आप चलिए हमारी राजधानी में श्रृंगवेरपुर में आप सुख से रहिए। लेकिन भगवान ने और भी बातें बताई कि मित्र मैं धर्म के बंधन में हूं, पिता के वचन को सत्य करना चाहता हूं, इसलिए मैं 14 वर्ष किसी गांव में वास नहीं करूंगा और न तो गांव में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं जैसे खेती के द्वारा या फैक्ट्री में बनी हुई वस्तुएं मैं नहीं खाऊंगा। कंदमूल फल जो वन में मिलता है वही खाऊंगा और सोऊंगा जमीन पर, किसी गांव में या नगर में नहीं रहूंगा, यह मेरे साथ शर्त है, इसलिए मैं आपके गांव में नहीं जा पाऊंगा, आप हमें क्षमा करें। निषाद राज तो बहुत रोने लगे, विषाद में पड़ गए और वे कहे भगवान से ठीक है आप चलिए गंगा जी के तट पर रहिए। तो निषाद राज स्वयं ही स्थान जोहने लगे कि राम कहाँ ठहरेंगे। एक सिंसुपा वृक्ष, एक अशोक का वृक्ष था, बहुत ही सघन छाया थी उसकी। तो निषाद राज ने कहा कि ठीक है तब आप यहीं वास कीजिए, और निषाद राज अपने हाथ से कुछ सुकोमल कुश से तृण और पल्लव वृक्षों के कोमल कोमल पत्ते तोड़ करके और भगवान के लिए बहुत सुंदर आसन लगाए बालुका पर वृक्ष के तले में। और इसके बाद उन्होंने आज्ञा दिया, उनके बहुत से सेवक अनेक प्रकार के कंद मूल फल ला ला करके भर दिए कई प्रकार से, और पानी भी ला ला करके नए नए पात्रों में भर करके रखे, बहुत सुंदर पानी निर्मल जल गंगा जी का लाए। तो भगवान सब फल खाए नहीं। भगवान ने कहा कि मुझे 14 वर्ष मुनियों का व्रत, मुनियों का वेश और मुनियों का आहार करना है। इस संसार में भगवान मनुष्यों की सृष्टि किए हैं तो सबका आहार भी निश्चित किए हैं। यदि कोई मुनि है साधु है तो उसे बहुत सीमित खाना चाहिए, और एक तो मात्रा में भी वो कम होनी चाहिए, क्वांटिटी कम होनी चाहिए, और वैरायटी भी बहुत नहीं होनी चाहिए। यानी कि 10-20 थाली में साधु सन्यासी को परोस दिया गया और खा भी नहीं रहा, आजकल तो ऐसे लोग साधुओं को भोजन करा रहे हैं, बेचारे को डायबिटीज है और उसको 500 मिठाइयां गांज देते और कहते प्रसाद हो जाएगा, प्रसाद के बाद बांट दिया जाएगा, तो तुमको भी डायबिटीज हो जाएगा, प्रसाद बांट दिया जाएगा। यह सब पाखंड है। वास्तव में भोजन के विषय में मुनियों का जो नियम है उसे अवश्य पालन करना चाहिए। तो जब भगवान ने कहा कि मैं मुनि व्रत धारण किया हूं, इसलिए मुनि का आहार और मुनि का वेश धारण करूंगा, तब श्रृंगवेरपुर से एक भी मिठाई नहीं आई कि किसी बहुत सुंदर दुकान से मिठाई आ गई, वैसी बात नहीं। कंदमूल फल आए जो वन में गांव से बाहर उत्पन्न होते, वे आए। तो भगवान ग्रहण नहीं किए, थोड़ा सा ग्रहण किए और जल पिए और वहीं उस वृक्ष के नीचे भगवान सोए रात को। श्री लक्ष्मण जी चरण दबा रहे थे भगवान के। चरण कितनी देर दबाए, रामायण में लिखा गया है जब भगवान को नींद आ गई तब लक्ष्मण जी धीरे से उठे और जाकर विरासन से पहरा देने लगे रात्रि के समय। लक्ष्मण जी एक दिन भी एक सेकंड भी नहीं सोए, इस तरह से जितेंद्रिय थे। तो जब भगवान सोए तो निषाद राज भगवान की इस स्थिति को देखकर, जमीन पर रामचंद्र सोए हैं, वे फूट फूट करके बच्चे की तरह रोने लगे। जहां लक्ष्मण जी बैठे थे वहां पर चले गए और बहुत रोने लगे कि मुझे यह देख करके बहुत पीड़ा हो रही है कि मेरा घर इतना सुंदर है, इतनी सुंदर राजधानी है, लेकिन फिर भी भगवान जमीन पर सो रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। और वे लगे कैकई को गाली देने रात्रि, बहुत प्रकार से भद्दी भद्दी बात बोलने लगे निषाद राज। तब लक्ष्मण जी उन्हें ज्ञान देने लगे, सांत्वना देने लगे कि मित्र घबराओ मत, ये प्रभु भक्तों को, ब्राह्मणों को, गौओं को और देवताओं को, पृथ्वी को सुख देने के लिए ये चरित कर रहे हैं, घबराओ मत। अपने भक्तों को शिक्षा देने के लिए भगवान इस तरह त्याग का चरित प्रस्तुत कर रहे हैं। ये चरित सुनने के बाद क्या किसी भक्त के मन में कभी आकांक्षा रहेगी कि हमको बहुत अच्छा बेड लगना चाहिए सोने के लिए? वो जैसा मिल जाए उसमें संतोष करे, खास करके विरक्त भक्तों की बात में कह रहा हूं। उसमें क्वालिटी नहीं देखना चाहिए कि बेडशीट कैसा है, पलंग कैसा है, हमको बहुत अच्छा चाहिए, ये चाहिए। भगवान तो जमीन पर सो रहे हैं, वैकुंठ बिहारी आकर भूमि पर सो रहे हैं, गंगा जी के तट पर बालुका में वृक्ष के नीचे। तो विरक्तों को, सन्यासियों को इसे सीखना चाहिए। अथवा कोई भी भक्त, भले ही वह गृहस्थ हो, लेकिन जीवन में सीखना चाहिए कि भोगों में कोई रस नहीं है, दम नहीं है, किसी तरह से नींद पूरी करनी है, वो शरीर की एक आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति तो सामान्य बिछौनों से भी हो सकती है, सामान्य तरह से, नाना प्रकार के बेडिंग आदि की क्या आवश्यकता है। भगवान शिक्षा दे रहे हैं। भगवान इस जगत में आते हैं तो बहुत भोग भोग करके शिक्षा नहीं देते हैं, त्याग त्याग कर शिक्षा देते हैं। कि भोग भोगने की प्रवृत्ति तो जीवों में स्वाभाविक है, त्यागने की प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं ऐसे त्याग करना चाहिए, त्याग ही सीखना है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में कह पुरुष पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुधिर जस्तमहम प्रपद्य। सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु वैराग्य विद्या सिखाने के लिए आए। भक्ति योग में वैराग्य विद्या बहुत आवश्यक है। किससे वैराग्य? इंद्रियों के भोगों से वैराग्य तो भगवान अपने आचरण द्वारा सिखा रहे। निषाद राज को लक्ष्मण जी उपदेश कर रहे हैं कि भगवान स्वेच्छा से वन में आए हैं, आप दोष बुद्धि मत कीजिए कैकेयी में। बहुत परमार्थ का उपदेश किए। रामचरितमानस में बहुत विस्तार से यह प्रसंग दिया हुआ है, लक्ष्मण जी की शिक्षा बहुत सुंदर शिक्षा दिए। इसके बाद प्रातः हुआ, प्रातः काल होने पर भोर में ही सुमंत्र जी जो गए थे राम को चार दिन के बाद लौटाने के लिए, वे भगवान के चरणों में बच्चे की तरह गिर करके रोने लगे। दिन बाल जिमिरोए, रोने लगे फुट फुट करके कि आप चलिए चलिए। भगवान ने कह दिया कि आप रथ लेकर के जाइए और मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा, मैं तो जाऊंगा वन। तब सुमंत्र जी रोने लगे। भगवान उन्हें समझा रहे हैं कि हे तात, हे पिताजी, भगवान का जो संबोधन है वो अद्भुत है। अपने मंत्री को जो दशरथ जी के सखा थे उनको भगवान पिता कह रहे हैं। हे पिताजी, ये कहना चाहिए अपने से बड़े लोगों को, यही कहना चाहिए। आजकल तो दुनिया भर के लोगों को लोग अंकल कहना चालू किए हैं, कम से कम किसी को भी अंकल कहते हैं, चाचा कहते हैं। तो भगवान ने अपने पिता के सखा को पिता कहा। अरे पिताजी, आप तो धर्म के रहस्य को पूरा पूरा जानते हैं, आपको मैं शिक्षा नहीं दे सकता। मैं धर्म के पालन के लिए वन में जाऊंगा। तो भगवान बहुत सा इतिहास कहने लगे। वे कहते हैं, सिवि दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। महाराज शिवि और दधीची ऋषि तथा महाराज हरिश्चंद ये धर्म के लिए करोड़ों क्लेश सहे, अपने कर्तव्य पालन में सत्य की रक्षा में यदि कष्ट भी हो तो उस कष्ट को झेलना चाहिए। जैसे महाराज शिवि महाराज कह दिए एक कबूतर की रक्षा की बात, तो उन्होंने किया, यहां तक कि अपने शरीर का मांस भी काट करके देना पड़ा, लेकिन उन्होंने दिया। वो घटना इस प्रकार की है, अग्निदेव और इंद्र परीक्षा लेना चाहते थे महाराज शिवि की कि ये बहुत शरणागत वत्सल है, दयालु है, ऐसा हमने सुना है। तो एक व्यक्ति कबूतर बना और दूसरा बाज। बाज ने कबूतर को खदेड़ता हुआ पीछा किया और कबूतर जाकर महाराज शिवि की गोद में गिर गया और बहुत थका था, हांफ रहा था। और मनुष्य की भाषा में कबूतर ने कहा, महाराज मैं आपकी शरण में हूं, ये बाज मुझको बहुत देर से खदेड़ रहा है, ये मुझे खा जाएगा, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो महाराज शिवि वास्तव में दया के मूर्तिमान स्वरूप थे। उन्होंने कबूतर को सहलाया और कहा, डरो मत, डरो मत। तब तक बाज आकर के कहा, महाराज ईश्वर के द्वारा निश्चित यह मेरा भोजन है, मैंने बहुत परिश्रम किया है इसके लिए, मैं बहुत देर तक इसका पीछा कर रहा, जब ईश्वर ने मेरा भोजन प्रस्तुत किया है तो आप इसे छोड़िए, मैं खाऊंगा। महाराज शिवि ने कहा, नहीं, यह मेरी शरण में है, आप इसे नहीं खा सकते। तुम्हें खाना से, भोजन से मतलब है ना, इसलिए मैं इस पक्षी के बदले तुमको कुछ फल या और कुछ दे दूंगा, उससे खाकर अपनी क्षुधा बुझा लो। तो उस बाज ने कहा, नहीं, मैं मांसाहारी पक्षी हूं, इसलिए मैं मांस खाऊंगा। तो महाराज शिवि ने कहा, ठीक है, इसके बदले दूसरा कोई जीव तुमको मैं दे दूंगा। तो इस पर बाज ने कहा, दूसरा क्यों, यदि इतना शरणागत वत्सल हो तो अपना मांस दो। महाराज शिवि ने कहा, ठीक है। तो एक तराजू मंगाया गया और एक पलड़े पर कबूतर रखा गया और एक पलड़े पर महाराज शिवि अपना मांस काट कर देने लगे। अपने हाथ से सर्वप्रथम उन्होंने अपने पैर के घुटने के नीचे का मांस काटा और चढ़ाया। फिर भी कबूतर भारी निकला, तो फिर दूसरे पैर का काटा, फिर भी भारी रहा, जांघ का मांस काटा, इसके बाद बाएं हाथ के मांस को काटा, कई तरह से चढ़ाने के बाद भी जब कबूतर का पलड़ा भारी ही रह गया तो उन्होंने कहा कि अब मैं अपने को ही चढ़ा रहा हूं कि पूरा खा जाओ, मतलब मेरा मरण हो जाए खा। तुम्हारा शिवी बैठे पलड़े पर, बैठते ही वो कबूतर बिल्कुल हल्का हो गया, और वे कबूतर और बाज वास्तव में पक्षी नहीं थे, इंद्रदेव और भगवान अग्निदेव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा महाराज स्वर्ग लोक तक आपकी कीर्ति फैल कर गई है तो हम लोगों को संदेह हो रहा था कि आप में यह गुण है या नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष हमने देख लिया, जब तक धरातल रहेगा, जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक आपका जश गाया जाएगा। तो जब वचन दे दिया एक शरणागत की रक्षा के लिए तो उसके लिए अपना मस्तक देना पड़े, अपना शरीर देना पड़े, फिर भी दिया शिवी महाराज ने, और उनकी कीर्ति भगवान के मुख से आ रही है। बलि महाराज ने भी अपने गुरु से कहा था दध्यंग शिवी प्रवृत्य को विकल्पो धरा दिस, शिवी महाराज अजर अमर और दधीची ऋषि, इनके विषय में आप सबों ने बहुत सुना है, देवताओं की रक्षा के लिए इन्होंने अपना शरीर दे दिया जिससे वज्र बना और वज्र से वृत्रासुर मारे गए, और महाराज हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए इन्होंने बनारस में काशी में अपने आप को बेच दिया लेकिन झूठ नहीं बोले, अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के यहाँ नियुक्त किए और बच्चे, और स्वयं ही चंडाल के यहाँ अपने को बेचे, और जब कफन लेना था कर लेना था तो अपनी पत्नी को भी क्षमा नहीं की। जब इनकी पत्नी रोती हुई इनके पास आई, इनके पास नहीं, जब रोती हुई आई श्मशान में और अपने आंचल को फाड़ कर उसने कफन बनाया था, आधी रात के समय महाराज हरिश्चंद्र सुने कोई अबला रो रही है, गए और उन्होंने कहा कि हमारे स्वामी का नियम है तुम्हें श्मशान का कर देना पड़ेगा, तो या तो हमें कुछ कपड़ा दो और नहीं तो पैसा दो। तो समझ रहे थे कि यह उनकी पत्नी है, उसका नाम था तारामती और सद्या भी नाम, तो वो रो रो करके कहने लगे कि आप पहचानते नहीं हैं मैं कौन हूं, मैं आपकी पत्नी हूं और यह आपका पुत्र है, आज इतनी विपत्ति में मैं हूं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है और कपड़ा भी नहीं है, इसके कफन बनाने के लिए मैंने साड़ी का आंचल फाड़ा है। तो महाराज हरिश्चंद्र कान बंद करके कहते हैं इस समय मैं किसी का पति नहीं हूं, मैं इस समय किसी का पिता नहीं हूं, इस समय अपने स्वामी का दास हूं, और तुम्हें यदि देना हो तो दो, नहीं तो ले जाओ साहु को, यहां तुम संस्कार नहीं कर सकती, इस तरह की बात बोल रहे। बारम्बार उनकी पत्नी कहते महाराज आप इतने निर्दय हो गए, ये आपके देह से जन्मा हुआ पुत्र है, आप इस पर दया नहीं करते हैं, मृतक संस्कार करना तो आपका धर्म था लेकिन आज दैव बस मुझे करना पड़ रहा है, आप दया कीजिए। महाराज हरिश्चंद ने कहा मैं इस समय अपने स्वामी का सेवक हूं, जो मेरा धर्म है वो मैं करूंगा। तब उनकी पत्नी तैयार हो गई कपड़ा देने के लिए, तो अपने साड़ी का शेष छोर वो फाड़ने लगी, जब ही फाड़ना चालू किया तेव ही भगवान प्रकट हो गए, सारे देवता प्रकट हुए, विश्वामित्र जी प्रकट हुए, और भगवान ने कहा धन्य है महाराज आपकी सत्यवादिता। भगवान ने वर मांगने के लिए कहा तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि आपके चरणों में मैं भक्ति चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र की कीर्ति आज भी गाई जाती है, और भगवान आगे भी कहते हैं रंति देव बलि भूप सुजाना धरय धर्म सही संकट नाना। महाराज रंति देव और बलि महाराज अनेक संकट सह करके भी धर्म को बचाए। महाराज बलि ने जब अपने मुख से कह दिया इस ब्राह्मण को मैं दूंगा तो गुरु रोकते रह गए, और उन्हें बंधन में भी पड़ना पड़ा, भगवान ने भी फटकारा, सब कुछ हुआ, लेकिन धर्म नहीं छोड़े, दे ही दिए, दे दिया उन्हें तो। बलि महाराज कीर्ति हमारे। और अंति देव 48 दिन भूखे थे, पानी तक नहीं पिए थे, लेकिन जो कुछ मिला था अंत में वो सब दे दिया उन्होंने, जबकि मरने का समय था उनका। खाने बिना वो पहले से ही तड़प रहे थे, लेकिन दे दिए। तो जहां धर्म का पालन करना है तो अव्याज धर्म का पालन करना चाहिए, कोई बहाना नहीं, जो कर्तव्य है कर्तव्य है। तो इस प्रकार भगवान ने पालन किया। तो निषाद राज के द्वारा प्रस्तुत की गई व्यवस्था को स्वीकार नहीं किए पूरा पूरा। और सवेरे जब वो जाने लगे सुमंत्र जी, तो उनसे ये बातें भगवान कह रहे हैं कि आप जाकर पिताजी को कह दीजिएगा। और सत्य क्या है, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म क्या है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। इसको वेद पुराण सभी कहते हैं। सोई में धर्म सुलभ करी पावा, तजे तिहुपुर अपजस छावा। और वह धर्म पालन का अवसर आ चुका है मेरे लिए, मैं अपने पिता के वचन को अखंडित बना सकता हूं कि नहीं, ये एक प्रकार की चुनौती मेरे जीवन में। या भगवान श्री राम वन में नहीं जाते तो वास्तव में दशरथ महाराज का धर्म खंडित होता है। तो भगवान कहते हैं कि वो धर्म पालन का मेरा अवसर है, मैं चुक नहीं सकता हूं इस समय, और मैं वन में जाऊंगा, आप जाकर के समझा दीजिएगा। मेरी ओर से मेरे पिता के चरण पर गिर कर आप कहिएगा कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब तरह से ठीक हूं, वन में आपके आशीर्वाद से मैं वनवास की अवधि पूरी करके और आ जाऊंगा। तो इस प्रकार भगवान ने विदा कर दिया सुमंत्र जी को। तो यहां से एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। भगवान गंगा जी पार कर रहे हैं, तो एक भक्त ने गीत लिखा है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी आवश्यकता हो जाती है भक्तों की, गंगा पार करने में केवट की नौका पर चढ़े। यहां से बहुत ही सुंदर लीला है, भगवान ने स्वयं ही नाविक को बुलाए, जबकि निषाद राज थे और लक्ष्मण थे, तो भगवान को डायरेक्ट नाविक को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। जबरदस्ती सुमंत्र जी को अयोध्या भेजकर और भगवान आए सुरसरी के तट पर। गंगा जी को सुरसरी कहते हैं, सुर का अर्थ देव और सरी का अर्थ नदी, देव नदी। ये गंगा जी मनुष्यों की नदी नहीं है, देव नदी। ये आती हैं ब्रह्मलोक से और इनकी कई धाराएं हो जाती हैं बाद में सुमेरु पर्वत पर, और उसके बाद एक धारा हिमालय पर आती है, और वही ये प्रसिद्ध गंगा जी जो गंगा सागर में मिलती। डायरेक्ट भगवान का चरण धोवन है, तो ये देव नदी कही जाती है। कोई दूर देश में भी हो और गंगा गंगा केवल उच्चारण करे तो उस मनुष्य का सारा पाप नष्ट हो जाता है, इतनी महिमा है। इसका कारण है कि देव नदी गंगा जी भगवान के चरणों से संबंधित, बहुत बड़ी महिमा है गंगा जी की। हम लोगों का तो बहुत बड़ा भाग्य है कि पुनः पुनः गंगा जी का संग मिलता रहता है, और इस बार तो बहुत ही अच्छा आयोजन हो रहा है हरिद्वार में, भागवत में स्नान और गंगा जी में स्नान दोनों सुलभ। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया है, देवता लोग भगवान से कहते हैं कि धन्य है वे लोग जो आपके कथा नदी में अवगाहन करते हैं और गंगा जी में, गंगा जी में शरीर स्नान करता है और कथा नदी में मन और इंद्रियां स्नान करते हैं। तो गंगा जी के तट पर भगवान आए, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। तो केवट दूसरे तट पर था गंगा जी के, कुछ महानुभाव ऐसा कहते हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं, नदी के बीच में ही, नदी के किनारे था, जल में था अपना लंगर डालकर। तो भगवान ने कहा, हे नाविक अत्र आगच्छ, यहां आओ, वयम पारम याम, हम पार जाएंगे, हम लोग पार जाना चाहते हैं, इधर आओ। लेकिन केवट ने साफ मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं। तो आश्चर्य हो गया लक्ष्मण जी को, नहीं क्या तमाशा है। और निषाद राज भी थे साथ में, समस्त नाविकों के वे सम्राट थे। निषाद राज समझ रहे थे कि वह भगवान राम का बहुत प्रेमी, तो प्रेम के वश में वो भगवान से अटपटा बोलने लगा। कहने लगा, नहीं 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 नहीं, आप इधर मत आइए, इधर मत आइए, वहां जाइए, वहां गंगा जी में कमर भर पानी है, वहां पार हो जाइए, इधर मत आइए, दूरे जाइए, भीरी मत आई जी। आप इधर मत आइए, इधर मत आइए, दूर जाइए, दूर जाइए। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान बुला रहे गंगा जी पार करने के लिए और कह रहे, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं, मैं नहीं पार कर सकता हूं, आप दूर जाइए, दूर जाइए, दूरे जाई, दूरे जाई, भीरी मत आई जी, कठवा के नैया मोर नारी न बनाई जी। भगवान की एक लीला बहुत ही प्रसिद्ध है, फैल चुकी थी सारे विश्व में। वह लीला क्या थी कि जनकपुर जाते समय इन्होंने एक बार एक पत्थर को अपने चरण कमल से छू दिया, तो पत्थर स्त्री हो गया और बहुत सुंदर स्त्री। क्या आज के युग में यदि ऐसी घटना हो जाए तो पूरी दुनिया में सारे टेलीविजन अखबार सब भर जाएंगे इस घटना से, और लोग निकालेंगे कैसे वो पहले फोटो था और इसके बाद कैसे स्त्री हो गए। तो भगवान जब ये घटना किए होंगे तत्काल में कितनी चर्चा होती होगी चारों तरफ। तो केवट बाह्य रूप से भगवान से यह कहने लगा, अरे आपके चरणों में एक अद्भुत जादू है, स्त्री बनाने की शक्ति है पत्थर को, तो फिर काठ तो और कोमल है। जब पत्थर को आप नारी बना देते हैं, आपके चरण रज में ऐसी शक्ति है, तो हमारी नौका को कहीं स्त्री बना दिए तो दो दो स्त्री घर में कैसे रहेंगे। इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। वास्तव में भगवान का चरण धोना चाहता था, यही उसका मूल प्रयोजन किसी भी तरह। भगवान का चरण धोने की उसे अभिलाषा थी, इसीलिए वो अनेक प्रकार के बहाना बना रहा। तो मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, नहीं नहीं किया। तो भगवान ने कहा, क्यों, आखिर क्या बात है। तो केवट कहता है, तुम्हारा मरम मैं जानता हूं, कहे तुम्हार मरम मैं जाना, आपका रहस्य मैं जानता हूं, रहस्य जानता हूं, क्या रहस्य है हम में, क्या विलक्षणता है। तो कहता है, चरण कमल रज महु सब कहई, मानुष करनी मूरी कछुआई। सभी लोग कहते हैं, संपूर्ण संसार में सभी लोग कहते हैं कि आपके चरण रज में मनुष्य बनाने की कोई शक्ति है। तब मनुष्य बनाने की शक्ति है तो इसका अर्थ क्या। तो वो कह रहा है कि मुझे ये डर है कि मेरी नाव भी कहीं स्त्री न बन जाए, ये मुझे बहुत भारी भय। यदि राम के चरण रज में स्त्री बनाने की ही शक्ति होती सब जगह, तो कितना पत्थर पर चल कर आए हैं। कितना जगह, अब तक तो करोड़ों अरबों स्त्री बन जानी चाहिए थी ना। वो तो एक ही घटना थी, गौतम जी की पत्नी अहिल्या उनके साप से पत्थर हो गई थी, घटना थी कि भगवान इंद्र अहल्या के साथ संग किए थे गौतम जी का वेश बनाकर। तो इस पर गौतम जी आए और उन्होंने समझ लिया अपनी पत्नी के इस दुर्व्यवहार को। तो वास्तव में उसका दोष नहीं था पत्नी का, जब उसके पति के वेश में ही इंद्र थे तो उसने पहचाना नहीं, पहचान नहीं पाई और इंद्र ने उसके साथ समागम किया था। तो इस पर गौतम जी बहुत दुखित हो गए, तुम्हें इतना विवेक नहीं है, क्या तुम पत्थर हो, दिमाग नहीं है, कौन क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि तुम पत्थर हो जाओ, तुम पाषाण हो गए तुरंत। ऋषि लोग भी बहुत फालतू ही होते हैं कभी कभी, अरे बेचारे से गलती हो गई तो संभालना चाहिए था, तो पत्थर बना दिए। लेकिन पत्थर बनने से पहले वो रोने लगे कि मेरा कोई अपराध नहीं था, आप ऐसा किए वैसा किए, मैं नहीं समझ पाई। तो दया से उनका चित्त द्रवित हो गया, उन्होंने कह दिया कि भगवान आएंगे और तुमको चरण का स्पर्श करके और पुनः उद्धार कर दे। तो बेचारी पत्थर बन गई थी, उजाड़ आश्रम था, कोई वहां नहीं था, वीरान था सब कुछ पत्थर वैसे, और वो स्त्री ऐसे थी, पत्थर भी ऐसे ही था बिल्कुल मूर्तिमान। तो उसको याद थी कि मुझे पति ने साफ दिया है और भगवान इस रास्ते से आएंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, इस आशा में थी। जब भगवान ने सिद्धाश्रम से बक्सर से जनकपुर जा रहे थे तो अपने गुरु विश्वामित्र जी से भगवान पूछते हैं, गुरु जी ये कैसा आश्रम है और ये बिल्कुल हाथ जोड़कर बैठी हुई बैठा हुआ पत्थर कैसा है, ये कैसी मूर्ति है। विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम नारी साप बस, ने कहा ये गौतम की नारी है, इसको गौतम जी ने साप दिया है, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, हे रघुवीर हे राम आप कृपा कीजिए, ये आपका चरण कमल रज चाहती है। इसका अर्थ यह है कि ये भी घटना सब जगह फैल चुकी थी कि अहल्या ने जब क्षमा मांगा अपने पति से तो पति ने कहा था कि भगवान के चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। तो विश्वामित्र जी भगवान से डायरेक्ट कहते हैं चरण कमल रज चाहती, ये चरण कमल का रज चाहती है, आप कृपा कीजिए, अर्थात अपना चरण रखिए इस पर। तो बताइए एक लड़का क्या साहस करेगा कि मैं एक तपस्वी की नारी भले पत्थर बनी हो उस पर चरण रखूं, ये भगवान तो भगवान है। तो भगवान ने कृपा करके अहल्या के मस्तक पर अपना चरण ऐसा छुआया, बस तत्काल वह पुनः सुंदरी स्त्री हो गई और भगवान की उसने बहुत सी स्तुति किया और गए पतिलोक आनंद भरी, जहां उसके पति थे वहां चले गए। ये घटना है, इस घटना सब जगह फैली हुई थी। भगवान जब इस जगत में अवतार लेते हैं तो उनकी लीलाएं तत्काल पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। केवट कहता है कि आपके चरण कमल के रज में मनुष्य बनाने की शक्ति है, तो तरनी मुनि घरनी हो जाए बाट परई मरिना उड़ाई। तो हमें बहुत बड़ा भय है कि हमारी तरनी हमारी नौका भी नारी बन जाएगी, और वह भी हमारे पास रहे तो ठीक ही है लेकिन मुनि की नारी हो जाएगी, ये बहुत बड़ा भय। एक तो नाव चली जाएगी नारी हो जाएगी और वह भी नारी मुनि की नारी हो जाएगी। ऐसी भी घटना फैली थी कि अहिल्या नारी बन करके पुनः है और अपने पति के पास चली गई। काठ को और पत्थर को नारी बना बना करके आप मुनियों को दे देते हैं, इससे मुझे बहुत बड़ा घाटा है। यही प्रतिपाल हूं सब परिवार हूं, नहीं जाना हूं कुछ और कबार हूं, हमारा और कोई काम धंधा नहीं है सरकार, यही नौका चलाता हूं, इसी से परिवार का पालन पोषण करता है, और कोई रोजगार नहीं और कोई धंधा नहीं, इसलिए कृपा करके हमारा रोजगार ठप मत कीजिए, और एक स्त्री का खर्चा चलाने में ही मेरा दम निकल रहा है, ये डबल स्त्री मत कीजिए। तो आप जाइए कहीं पार कर जाइए, चलिए तो मैं आगे आगे बता देता हूँ, वहाँ बहुत कम पानी है वहां से चले गए।
और अंत में कहा कि
जौ प्रभु पार यवसिगा चहू मोहि पद पदुम पखारन कहूं।
यदि आप सचमुच जाना ही चाहते हैं, यदि आपको आपका यही हट है कि आप मेरी नौका पर ही चढ़ेंगे, तो पहले मुझे आज्ञा दीजिए, आपका चरण पखार लूं, धो लूं, एक भी धूल न रह जाए, तब मैं आपको नौका पर चढ़ाऊंगा। मुझे बहुत भारी भय है आपके चरण रज। आपका दोष नहीं है, आपके चरण रज का दोष है, इसलिए मैं पूरा पूरा धो लूंगा, तब आपको नौका पर चढ़ाऊंगा।
पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो।
और आप ऐसी शंका मत कीजिए कि मैं कोई बहुत गंभीर उतराई आपसे लूंगा, मैं केवल चरण रज से डर रहा।
पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो।
और फिर कहता है मोहि राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कहूं।
बर तीर मारही लखन पै जब लगी न पाए पखारी हो तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल उपार उतारी।
मैं आपकी और आपके पिता की सौगंध खाकर कहता हूं कि जब तक चरण नहीं धोऊंगा तब तक नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा, मैं अपना काम धंधा ठप नहीं करूंगा, परिवार को मारूंगा नहीं, यही नौका ही आधार है।
ये लक्ष्मण जी भले तीर मारे, मर जाऊंगा लेकिन फिर भी आपको बिना चरण धोए नहीं चढ़ाऊंगा।
बर तीर मार रही लखन पाए जब लगी न पाए पखारी हो तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल उपार उतारी।
जब तक चरण नहीं धोऊंगा तब तक नहीं पार उतारूंगा।
और आपकी और आपके बाप की सौगंध खाकर कहता, दशरथ की शपथ खाकर कहा, ऐसे बोल रहा। तो लक्ष्मण जी ये तीर चमका रहे हैं ना, भले मार दे लेकिन वो देख लिया कि जब वो अटपटांग बोल रहा था तो लक्ष्मण जी कुछ भौहें तरेर रहे थे, ये कैसा अटपटांग बोल रहा है।
कुछ विद्वानों का कहना है कि पूर्व काल में क्षीर समुद्र में घटना घटी थी, एक कोई कछुआ भगवान के चरण कमल को छूना चाहता था, भगवान शेष सज्जा पर सोए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे थे, एक कछुआ भगवान के लाल लाल चरणों को देखकर उसका स्पर्श करना चाहता, तो शेष नाग ने फुफकार मारा, हटो दूर, वो तो भगवान के रक्षक हैं, कछुआ को क्यों निकट आने। तो फुफकार मारते थे कछुआ हट जाता था, और लक्ष्मी जी ने भी संकेत किया था कि हटाओ हटाओ कछुआ आ रहा है। तो कुछ महानुभाव ऐसा कहते हैं कि वही कछुआ केवट बना था, तो उसको बात याद है कि मैं उस समय चरण छूना चाहता था तो नहीं छूने दिए, अथवा उसको ये भी याद होगा कि यही लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में भी रहते हैं, तब यहां फुफकार मारे चाहे डस भी दे बिना चरण धोए में नहीं उतारूंगा।
तो बरु तीर मारही लखन पाए जब लगिन पाए पखारी हो तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी, तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूंगा।
जब इस प्रकार का सन्नाटा छा गया, लक्ष्मण ही चुपचाप थे, निषाद राज चुपचाप, सीता ही चुपचाप, तब भगवान हंसने लगे,
कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जही तो नाव न जाई।
भाई ठीक है, वही करो जिसे तुम्हारी नाव बची रहे।
वो कहता है क्या क्या करूं कि नाव बची रहे, साफ साफ बोलिए क्या मुझे करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं
बेग यान उछल पाए पखारू होत विलंब उतार रही पारू।
अरे भाई वही पानी लाओ और चरण धो चलो, हमको देर हो रही है, मुझे गंगा जी पार करना है।
भगवान से कहलवा लिया केवट कि लाओ पानी और चरण धो,
ये उसकी चातुरी थी। वास्तव में भगवान भक्ति के वश में,
बेग यानु जल पाए पखार।
भगवान मानो कहते ठीक है अब ज्यादा बात मत करो, लाओ लाओ पानी लाओ पानी लाओ, जब तुमको भय है भय है तो धो सकते हो। भगवान क्या ये नहीं कह सकते थे कि नहीं नहीं ये तुम्हारा भ्रम है, मैं कितना दूर से चल करके आया हूँ, कितने पत्थर पर पैर रखा हूँ, कोई तो नारी बना नहीं, तुमको क्या भय है, नौका नहीं जाएगी। कहा होगा भगवान ने, लेकिन वो कहा कि नहीं सरकार, हमको विश्वास नहीं, जब तक चरण नहीं धो लूंगा तब तक मेरा संदेह, मेरा भय नहीं जाएगा। बाप रे बाप, रोजगार ठप हो जाएगा तो परिवार कैसे जिएगा। पात भरी सफरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई। हमने वेद शास्त्र नहीं पढ़ा है। केवट की जाति नौका चला करके जीविका चलती है, नौका को नहीं जाने दूंगा किसी तरह। आप जैसे खतरनाक सवारी आ जाए तो हमारा तो सब खत्म हो जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है ठीक है, हंस करके कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तव नाव न जाए, वही करो जिसे तुम्हारी नौका न जाए। और स्पष्ट शब्द में भगवान कहते हैं बेगी आनु जल, आनु का अर्थ आनो लाओ, तुरंत पानी लाओ और चरण पखारो। बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। विलंब हो रहा है, जल्दी पार करो। कुछ तो विलंब हो गया था सुमंत्र जी को भेजने में, और इधर अब केवट नाटक करने लगा, यहां देर हो रही थी। होत विलंब उतार ही पार। विलंब शब्द भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान को ये भय है कि कहीं अयोध्या से और दूसरी टीम ना आ जाए लौटाने के लिए। ये जल्दी जल्दी वन में वेग से बढ़ाया जाए, जल्दी जल्दी भागना चाहते। होत विलंब उतार ही पार, विलंब हो रहा है, जल्दी से जल्दी हमको पार करो। इस अवसर पर भगवान शिव बोलते हैं, रामचरितमानस में ये जो कथन है शिव जी के मुख से है, जैसे श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी के मुख से। तो भगवान शिव कहते हैं कि जासु नाम है, जब ये कहीं बारा ऐसे कुछ है, जिनका एक बार नाम लेकर के व्यक्ति भवसागर पार कर जाता है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, नर उतरही भवसागर पारा। जिनका नाम एक बार बोलने से या मन में स्मरण करने से व्यक्ति दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है, सोई प्रभु। जासु नाम सुमिरत एक बारा, नर उतरही भव सागर पारा। सोई प्रभु केवट ही निहोरा, जहि जग किए तिहु पग हुते थोरा। कौन प्रभु निहोरा कर रहे हैं केवट से? जिनका एक बार नाम लेने पर व्यक्ति संसार सागर को पार कर जाता है। छोटी सी नदी पार करना कौन कठिन? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जिनके नाम की इतनी महिमा है, जासु नाम सुमिरत एक बार, नर उतरही भव सिंधु अपार। भव सिंधु ए राग रोष काम क्रोध लोभ आदि पार करना कितना कठिन है, जन्म मरण की धारा। लेकिन एक बार भगवान का नाम लेने वाला इस संसार सागर को पार कर जाता है। सोई प्रभु केवट ही निहोरा, जेहि जग किए तिहु पग हुते थोरा। वही प्रभु जिनके नाम की ऐसी महिमा है, केवट का निहोरा कर रहे हैं, जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को तीन पग से भी छोटा कर दिया था। भगवान शिव याद कर रहे हैं कि जब भगवान श्री राम वामन रूप में अवतार लिए थे तो बलि महाराज के यज्ञ में गए, बलि महाराज ने दान देने की उत्सुकता व्यक्त की, तो भगवान ने मांगा हमें तीन पग भूमि चाहिए। बलि महाराज ने संकल्प किया, दे दिया। भगवान नापने लगे संपूर्ण भूमंडल, संपूर्ण विश्व को, तो दो पग में ही सारा संसार नाप लिए। एक पग ऊपर बढ़ाए तो सत्य लोक तक गया और एक पाताल तक, और शरीर बड़ा होकर के भर गया पूरे आकाश में। तो तीसरे पग के लिए जमीन नहीं बची। भगवान डांटने लगे बलि महाराज को, अरे असत्यवादी, अरे झूठा, तुम्हारे पास तीन पग जमीन नहीं थी तो तुमने देने की प्रतिज्ञा क्यों किया? तुम्हारे गुरु जी भी कह रहे थे कि तुम दानी बन रहे थे ना, अब तुम्हें नीचे रहना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। गुरु की अवहेलना किया और प्रतिज्ञा करके तुमने दान नहीं दिया, पूरा नहीं दिया। ये भगवान का नाटक देखी। आए थे छोटा छोटा पैर दिखा करके नापना हुआ तो बहुत बड़ा पैर बढ़ाकर नाप ली और अपने भक्त को डांट रहे थे। बोले महाराज कहते हैं ठीक है, आप ये कहते हैं कि मैं झूठा हूं लेकिन अपना वचन झूठा नहीं होने दूंगा। आप दो पग में सारा विश्व नाप लिए लेकिन मेरा शरीर अभी बाकी है, आप तीसरा पग उठाइए, मेरे मस्तक पर रख दीजिए, मुझे भी नाप लीजिए। और भगवान ने वैसा ही किया वास्तव में। कहते ठीक है, तो आज से तुम मेरा दास हुआ जीवन भर के लिए। ऐसा लगता था कि बाहर से भगवान निग्रह कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान अनुग्रह कर रहे थे। तो जे ही जग किए तिहू पगहू ते थोरा, जिस प्रभु ने इस विश्व को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, क्या वे गंगा जी को पार ऐसे नहीं कर सकते थे? क्या नौका की आवश्यकता थी? जो संपूर्ण विश्व को नाप सकते हैं वे भगवान गंगा जी की एक कितनी धारा होगी, मुश्किल से दो फरलांग तीन फरलांग ऐसे धारा होगी, चाहे मान लीजिए एक माइल हो चौड़ी, क्या उसको पार नहीं कर सकते? या भगवान की लीला माधुरी, भगवान केवट से निहोरा करे, लाओ भाई जल्दी करो पार जाना है। निहोरा करो तो उसने कहा तो चरण धो लू ना, धो लू ना, तीन बार काला करके, हाँ भाई धो लो जितनी इच्छा करे धो लो, एक भी धूल नहीं रहनी चाहिए, एक भी कण नहीं रहना चाहिए, हाँ ठीक है एक भी कण नहीं, तुम धो लो। तो पदनख निरखी देव सरी हरसी, सुनि प्रभु वचन मोह मति करस। जब भगवान गंगा जी के तट पर बढ़ने लगे और नौका लाने लगा केवट, तो भगवान के चरण नख को देखकर गंगा जी आनंद में भर गई, क्योंकि इसी नख से वो निकली। भगवान का चरण नख ही गंगा जी का उद्गम स्थान, गंगा जी का पिता यदि कहा जाए तो भगवान का चरण नख है। और अभी जब बलि महाराज से भूमि भगवान ने लिया था और एक पैर जब सत्य लोक में बढ़ा तो ब्रह्मा जी ने उस चरण ने उसे रखा कमंडल में, सत्यलोक में रख लिया। एक तो कारण समुद्र का जल ऐसे ही चिन्मय है और दूसरे वह भगवान के चरण कमल को धो धो कर गिरने लगा। अप्राकृत जगत का वो जल कारणाणव, स्पिरिचुअल वाटर, मेटेरियल जल नहीं, वो तो भगवान के चरण को धो करके गिरा। सबसे पहले वो नख पर ही आ रहा था तो नखों को धोता हुआ भगवान के चरण कमल को धोकर ब्रह्मा जी के कमंडल में आया। ब्रह्मा जी ने पूजन किया भगवान के चरणों का, ऋषियों ने स्तव किया, बहुत बड़ा उत्सव हुआ, भगवान के विजय की गाथा गाई जा रही थी। गंगा जी जब देखी कि हमारा उद्गम स्थान, हमारा जन्म स्थान हमारे पास आया, तो बहुत हर्ष हुआ गंगा जी को। लेकिन भगवान के वचन को सुन करके उनके मन में बड़ा मोह हुआ। मोह का अर्थ भ्रम। जिस समय भगवान अपना चरण बढ़ाए थे, मैं उत्पन्न हुई थी, इतना लंबा पग, इतना लंबा पद न्यास, और वही प्रभु एक छोटी सी नदी को पार करने के लिए, मुझे पार करने के लिए केवट से हाथ जोड़ रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं, अद्भुत विचित्र लीला। पदनख निरखी देव सरी हरसे, सुनि प्रभु वचन मोह मति करस। तो इस तरह से ये बात है। अब किस तरह केवट चरण धोया इसको कहते हैं। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरि लेयावा। तो केवट जब भगवान के रजायस आज्ञा को पाया तो गया और कठौता में पूरा पानी भर कर लाया। वो दिखा रहा था कि अभी मैं कठौता में पानी ला रहा हूँ, टेस्ट करूंगा, यदि कठौता चेंज हुआ नारी बना तो फिर भी नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि काठ का कठौता है, काठ का बर्तन और काठ की नौका है, बाहरी रूप से वो भगवान को ये दिखाना चाहता था कि पहले मैं इसको टच करा कर देख रहा हूं, कहीं ये तो नारी नहीं बन गया बन रहा है, तो कठौता में पानी लाया भर करके, पानी कठौता भरी ले आवा। अति आनंद उमंग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अतिशय आनंद में पुलकित शरीर होकर के और लगा भगवान के चरणों को धोने। उसे चरण कमल के रज से कोई भय नहीं था, वास्तव में धोना चाहता था, तो बहुत बहुत प्रकार से धो रहा था। एक बार चरण धो करके खूब अच्छा से और पिया, और पी करके अपने बच्चे को अपनी पत्नी को दिया पीने के लिए घर में छिड़का, और कहा कि एक बार में पूरी धूल नहीं जाएगी, इसको कई बार धोएंगे तब, नहीं तो हमको अभी भी भय है। भगवान ने कहा अरे तुम 10 बार धो लो, जितना धोना तुम धो लो। धो धो करके झूठ मूठ देखता था कि इधर तो नहीं रह गया, गया कोई कण, बाकी तो नहीं रह गया, नहीं तो नौ का नारी बन जाएगी, खतरा हो जाएगा। कई बार धोया। बरसी सुमन सुर सकल सिंहाही एहि सम पुण्य पुंज को नाही। जिस समय केवट भगवान के चरण कमल का प्रक्षालन कर रहा था, उसमें देवता सब आ गए आकाश में और केवट पर फूल बरसा बरसा करके और उसकी प्रशंसा करने लगे। एहि सम पुण्य पुंज को नाही, इस केवट के समान सुकृतिशाली भाग्यवान इस विश्व में कोई नहीं। भगवान स्वयं अपने मुख से कहे कि धो लो मेरा चरण, और वो भी मनमाना धो रहा है। चरण जल पिया, मस्तक पर रखा, घर में छिड़का, संबंधियों को दिया, वास्तव में केवट के समान भाग्यशाली कोई नहीं। यही सम पूर्ण पुंज को ना पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गय पार। पद पखारी जलपान करी, चरण धोया, जल पिया और भगवान को पार ले गया गंगा जी के, और नौका को खेने में भी बहुत देर किया, ऐसा नहीं जल्दी पार कर दे। कभी कभी भगवान कहते थे भाई जल्दी करो जल्दी करो, तो वो तो बहाना कर रहा था, धीरे धीरे खे रहा था। भगवान को पार ले जाने के पहले वो अपने पितरों को और परिवार को पार कर दिया, ये शिव जी कहते थे। आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गय लय पार। जितने पितर हुए वे सब पार हो चुके, सभी वैकुंठ चले गए। भगवान जिसकी नौका में है, जो चरण धोया, तो सारे परिवार के लोगों का गारंटी हो गया वैकुंठ मिलना है। केवट का तो था ही, आप सहित परिवार पितर पार करी, पितरों को पार किया, अपने परिवार को वैकुंठ का अधिकारी बना दिया, और बहुत ही खुशी के साथ भगवान को ले गया। मुदित गय लय पार। उतरी ठाढ़ भय सुर सरी रेता सीए राम गुह लखन समेता। तो जा करके पार होकर गंगा जी के रेत पर खड़े हुए, कौन कौन लोग? भगवान तथा सीता जी, लक्ष्मण और निषाद राज, ये चार थे नौका। तो उतरी ठाढ़ भय सुर सरी रेता, सुरसरी के देव नदी गंगा जी के रेता पर खड़े हुए, चले नहीं गए। केवट ने कहा कि उतर करके थोड़ा रुकी और मैं आ रहा। केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। जब चारों खड़े थे तो केवट उतरा और जाकर साष्टांग प्रणाम किया, बहुत खुशी में था। बाहर से यह खुशी व्यक्त कर रहा था, दिखावटी खुशी, बहुत अच्छा। मुझे बहुत डर था कि मेरी नौका नारी बन जाएगी, लेकिन बच गई, बहुत अच्छा। लेकिन वास्तविक जो आनंद था वो तो और था। उनसे बाहरी आनंद बता रहे हैं। केवल उतर कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो भगवान ने परम संकोची स्वभाव के ये सोचने लगे कि इसको कुछ खेवाई नहीं दिया, उतराई नहीं दी, फ्री यात्रा किया। भगवान संकोच में पड़ गए, लेकिन अपने पास न तो कोई गहना पहन कर गए थे, न कोई पैसा लेकर गए थे, कुछ नहीं। उस तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। और सीता जी वन में गई थी तो एक गहना लगा करके गई थी, बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनी थी और समस्त अंगों में गहना धारण की थी। जिस समय सीता जी वन में आ रही थी राम के साथ, तो कैकेयी ने कहा था, उस समय वाल्मीकि रामायण में लिखा गया, सीता जी से कहती है कि तुम भी अपने पति जैसा तपस्विनी का वेश धारण करो। तो सीता जी तैयार हो गई, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने रोक दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, राम को जैसे नचाना हो तुम नचा लो, सीता तपस्विनी बनकर नहीं जाएगी। तुमने राम के लिए वर मांगा है, सीता के लिए नहीं, और महाराज दशरथ भी ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बेटी सीता जैसे है उसी रूप में जाएगी, इसका वस्त्र नहीं उतरेगा और इसके आभूषण नहीं उतरेंगे। तो सीता जी सारे आभूषणों को धारण करके गई थी। इसका एक और प्रमाण मिलता है कि जब सुग्रीव से भगवान मिले तो सुग्रीव जी ने कहा कि एक स्त्री आकाश में रोती हुई जा रही थी, उसने अपना कुछ आभूषण अपने कपड़े में अंचल में फेंका है मेरे पास, तो भगवान को दिखाई, वो भगवान को दिखाए सुग्रीव जी। तो भगवान जब सुरसरी के रेता पर खड़ा हुए तो थोड़ा संकोच कर सोचने लगे, तो पिए ही किस जान निहारी, मनी मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी अपने पति के हृदय की बात तुरंत समझ गए। स्त्री को ऐसा होना चाहिए जो पति के आकांक्षा को समझ जाए। भगवान थोड़ा सा गंभीर होकर सोचने लगे तो सीता जी समझ गए कि ये केवट को कुछ उतराई देना चाहते हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं, कुछ पाकिट में है ही नहीं। पाकिट ही नहीं है, पाकिट में क्या हो कुछ नहीं है भगवान के पास, तो पत्नी समझ गई। और उसके देह पर तो करोड़ों अरबों रुपए का आभूषण था। तो सीता जी अपने हाथ की एक अंगूठी निकाली, मुद्रिका सोने की, जिसमें माणिक्य लगा था, हीरा लगा था, उसको वो अभी कई लाख रुपए का होगा उस समय। तो सीता जी ने खूब खुशी के साथ उतार दिया, छिपा करके उतारी, उतार करके और चुपके से अपने पति के हाथ में पकड़वा दिए, जैसे केवट न देखे, केवट देखा भी नहीं। तो सीता जी का यह व्यवहार देखे, पत्नी को तैयार रहना चाहिए पति की इच्छा पूरी करने के लिए। स्थान स्थान पर शिक्षाएं मिलती जाती हैं रामायण से, और प्रसन्न मन से उतारी। यद्यपि खेवाई उतनी कीमती नहीं थी बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो, परंतु फिर भी सीता जी ने उतार कर दे दिया। कहे कृपालु ले हूं उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान ने कहा आप अपनी उतराई ले लो, तो मेहनत किए, हम लोगों को पार किए, और हम नहीं चाहते हैं कि हम निःशुल्क पार हों, तुम ये अपनी उतराई ले लो, अपना परिश्रम लेना। तो केवट तो और व्याकुल होकर चरण में गिर गया और कहा कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दुख मिटे दोष दुख दारिद दाव। कि नाथ आप क्या ये दे रहे हैं, आज मैं क्या नहीं पा गया, मेरा दारिद्र, मेरा दोष, मेरा कर्म फल सब कुछ नष्ट हो चुका है, ये मैं नहीं लूंगा, ये क्या दे रहे, मैं क्या नहीं पा गया। बहुत काल में किन्ह मजूरी, आज दिन विधि बनी भलपूरी। मैं बहुत दिन मजदूरी किया हूँ, बहुत नौका चलाया हूँ, लेकिन विधाता ने आज ही पूरा पूरा बनी दिया है, आज ही परिश्रम का फल ब्रह्मा ने दिया हमको, या आपको पार किया। वास्तव में परिश्रम का फल आज ही मिला कि और समय में तो जीवों को मनुष्यों को पार करता था, लेकिन साक्षात परब्रह्म भगवान को आज पार किया। तो भगवान की सेवा का अवसर मिला तो आज मैं सब कुछ पा गया। बहुत काल तक परिश्रम किया था लेकिन आज परिश्रम का पूरा पूरा फल पा गया। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे दीन दयाल, आपका अनुग्रह चाहिए मुझे, आपकी कृपा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। केवल था बहुत बुद्धिमान चतुर, उसने भगवान से कह दिया। जब भगवान आग्रह कर रहे थे ले लो तो कह दिया नहीं इस समय नहीं, लौटते समय जो देंगे तो देखा जाएगा। ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि आप जरूर इसी पद से लौटिएगा। उसके कहने का आशय यही था कि फिर आइए, फिर आपको पार करूं अयोध्या जाने के लिए। एक बार वन जाने के लिए पार किया, एक बार अयोध्या जाने के लिए पार करूंगा। तो भगवान को वचन में बांध लिया, ठीक है फिरते समय लौटते समय जो देंगे वो ले लूंगा। तो भगवान हंस रहे थे। और यह लिखा गया है कि भगवान लंका से जब चले थे सीता जी को लेकर, तो सभी बानर उस पुष्पक विमान पर चढ़े थे। तो भगवान ने जहां जहां वचन दिए थे वहां वहां विमान उतारे। उसके लिए एयरपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी, कहीं भी उतार सकते। उस केवट के पास भगवान उतरे थे और उतर करके वहां से गंगा जी पार करके फिर पुष्पक विमान पर चढ़े। भगवान को भी मजा आ रहा था केवट की नौका पर। इतना प्रेम से वो वचन बोला था, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करना एन चितई जान की लखन। भगवान उस समय हंसे थे उसके अटपटांग वचन को सुनकर, उन्हें दुख नहीं लगा था। कोई कह दे कि तुम्हारी और तुम्हारे बाप की सौगंध खाकर कहता हूं तो दूसरा आदमी तो गर्म हो जाएगा तुरंत, देखो बाप सब मत कहो। ऐसा कहेगा, लेकिन भगवान हंस रहे थे। हमारे विषय में जो कुछ कहना है कहो, लेकिन बात करना मत लो। लेकिन वो तो दशरथ जी का नाम ले दिया था, फिर भी भगवान प्रसन्न थे। तो फिरती बार मह जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धरी ले, आप लौटते समय जो दीजिएगा वो मैं प्रसन्नता से ले लूंगा, इस समय आग्रह मत कीजिए। तो बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु के वट ले, विदा किन करुणा यतना भक्ति विमल बर दे। बहुत आग्रह किए बारी बारी से। भगवान जब समझा कर हार गए तो लक्ष्मण जी ने कहा भाई ले लो, तुम्हारे परिवार का प्रश्न है, खर्चा चाहिए, ब्याह चाहिए। फिर सीता जी आग्रह करने लगी कि नहीं आप ले लीजिए ले लीजिए, ये अपनी पत्नी को दे देना है। जो सीता जी की अंगूठी थी उसको सीता जी ने कहा कि ये अपनी पत्नी को दे देना और तुम ले लो ले लो। लेकिन बहुत कीन है प्रभु लखन से, नहीं कछु केवट ले, केवट कुछ भी नहीं लिया। तब भगवान ने विमल भक्ति का वर दे करके उसको विदा किया। भगवान ने कहा कि मेरे प्रति तुम्हारा शुद्ध प्रेम बना रहेगा, भक्ति बनी रहेगी। जब केवट यह वर पाया तब लौट। भगवान ने आग्रह किया ठीक है। वो कहता था कि मैं भी चलूंगा वन में कुछ दूर। भगवान ने कहा नहीं आप लौट जाइए, तो लौट गया। अब तक भगवान स्नान नहीं किए थे, सवेरे मंत्री को विदा करने में और केवट के साथ इस वार्ता में अभी स्नान नहीं किए थे। लगभग सूर्योदय हो रहा था तो भगवान वहां पर, तब मत जन कर रघुकुल नाथा पूज पार्थिव नायो मान। हाँ मैं एक बात छोड़ दिया, इस अवसर पर कहना आवश्यक मैं समझता हूँ। जब भगवान अंगूठी दे रहे हैं केवट को तो इससे सबको शिक्षा लेनी चाहिए, कहीं भी किसी से भी कोई फ्री काम नहीं कराना चाहिए। आज के संसार में बहुत बड़ा रोग है, नहीं तो अज्ञात रूप से ऋण चढ़ता है। किसी के ऋण को अनावश्यक ग्रहण नहीं करना चाहिए। और ये नियम है कि जैसे राजा की सेवा प्रजा करती है, गुरु की सेवा शिष्य करते हैं, या कोई भी बड़ा व्यक्ति है तो उसकी सेवा करता है, पति की सेवा पत्नी करती है, माता पुत्र की सेवा करती है, तो जिसकी जो सेवा कर रहा हो तो सेव्य का ये धर्म है कि उसके उस सेवा को लौटावे जथा योग्य समय पर, नहीं लौटाने पर बहुत बड़ा बंधन होता है, कर्म बंधन होता है और उसको कई गुना चुकाना पड़ता है परलोक में। इसलिए किसी का ऋण नहीं रहे। जैसे राजा प्रजा से कर लेता है, टैक्स लेता है, तो राजा का धर्म है कि वह प्रजा के उस सेवा को लौटावे कई प्रकार से, नहर बनवा कर, बिजली की अच्छी व्यवस्था करके, सड़क बना करके, या अकाल के समय फ्री अन्न बांट करके, कपड़ा बांट करके, जैसे तैसे उसको लौटावे, नहीं तो बहुत बड़ा कर्म बंधन होता है। गुरु है शिष्यों से बहुत लेता है, ये तो देखा गया है सब जगह, तो ये गुरु पर ऋण चढ़ता है, तो उसका कर्तव्य है कि वह शिष्यों को प्रचुर ज्ञान दे, उन्हें प्रचुर मात्रा में भगवान के बारे में बतावे, ज्ञान दे, उन्हें भक्ति के पथ पर लीड करे, नहीं तो गुरु ऋणी हो जाएगा, उसे कर्म भोगना पड़ेगा। किसी को अधिकार नहीं है कि एक पैसा भी फ्री ले, किसी को ये राइट नहीं, कई तरह से उसे लौटाना चाहिए। और पुत्र अपनी माँ से लेता रहता है तो खैर कुछ उम्र तक तो फ्री है, कुछ उम्र तक विचार नहीं होता है, लेकिन बाद में पुत्र का धर्म है कि वह माता पिता की सेवा करे, कई गुना लौटावे, नहीं तो कर्म बंधन होगा, उसकी सजा भोगनी पड़ती है। तो इस प्रकार से हम किसी से कुछ काम कराए हैं, किसी से कुछ लिए हैं, तो भगवान ने नियम बनाया है कि प्रतिदान होना चाहिए, लेना है, लेने का अधिकार है, लेकिन उसी तरह से देने का कर्तव्य भी है, देना चाहिए। जो व्यक्ति दे नहीं सकता उसे लेने का कोई राइट नहीं। तो इस तरह से भगवान के इस आचरण से सीखना चाहिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं, लोग फ्री काम कराने में बहुत आनंद लेते हैं, कोई कहीं जा रहा है यदि रेल में बिना टिकट के चला जाए तो बहुत आनंद में रहते, बड़ा अच्छा या कोई कह दे कि नहीं नहीं इसका दाम हम नहीं लेंगे तो हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा नहीं होने देना चाहिए, देना चाहिए दूसरे रूप में। कोई पैसा दे रहा है तो मान लीजिए पैसा ही नहीं लौटा पाए, लेकिन प्रतिदान के अनेक तरीके होते हैं, किसी न किसी तरह से उसे लौटा ही देना चाहिए, इससे संसार सुखी होता है। भगवान एक नौका पर चढ़े लेकिन नौका की खेवाई से बहुत अधिक केवट को दे रहे थे, जबकि भगवान के पास था नहीं, तो पत्नी के पास। और इसे एक शिक्षा मिलती है कि पति यदि किसी अच्छे कार्य में खर्च कर रहा है तो पत्नी को चेचा नहीं करना चाहिए, ये क्या कर रहा है, लुटा देगा सब, ये करेगा। सीता जी कह सकती थी कि अरे खेवाई दो चार पैसा हुआ कि इतना रुपया का हो गया, खेवाई कौन ज्यादा हुई, तो अंगूठी उतार कर सीता जी ने दे दिया। तो पति यदि भक्त है और भगवान की सेवा करना चाहता है तो पत्नी को पूर्ण समर्पित होना चाहिए, ठीक भगवान की सेवा करो, भगवान सब करेंगे। अब वो अपना अकिल न लगाने लगे कि नहीं नहीं ऐसा बच कर रहना चाहिए, ये करो वो करो। जैसे बलि महाराज भगवान को दे रहे थे तो उनकी पत्नी विंध्यावली ने कहा ठीक है जो भी था। इसे डरना नहीं चाहिए कि सारा धन चला जाएगा तो फिर संकट में पड़ जाएगा परिवार, ये होगा वो होगा, भगवान संकट में नहीं डालेंगे, लेकिन हाँ वो भगवान की सेवा में पैसा लग जाना चाहिए निश्चित, नहीं तो वो ठीक नहीं होता है। कई शिक्षाएं हमें फ्री कार्य नहीं कराना चाहिए, कोई गरीब व्यक्ति है हमारी सेवा किया है कुछ काम किया है तो उसकी आवश्यकता, उसके बच्चे उसकी पत्नी पर भी ध्यान देना चाहिए, इसका काम कैसे चलेगा, ऐसा नहीं कि दो चार रुपया दबा करके हम उससे ले लें फिर में डाल करके, सब भोगना पड़ता है, एक एक कर्म का हिसाब, कहाँ खर्च करना है कैसे करना है। हम लोग पढ़ते हैं कि एक बार चाणक्य से मिलने के लिए, चाणक्य पंडित जी से मिलने के लिए पाटलिपुत्र पटना में सिकंदर का अलेक्जेंडर का मंत्री आया, वो बातचीत करना चाहता था, तो उसमें चाणक्य पंडित जी एक दीपक के प्रकाश में काम कर रहे थे, दीपक जलाकर कुछ काम कर रहे थे, कुछ देर किए और जो उस मंत्री से बात करना हुआ तो ऐसा ही एक दूसरा दीपक जला लिए बगल में और उसको बुझा दिए। तो उस मंत्री को आश्चर्य हुआ कि वैसा ही दीपक दूसरा जलाने की क्या आवश्यकता थी, पहले दीपक के प्रकाश में भी बातचीत हो सकती थी। तो उसने पूछा कि आपने दूसरा दीपक क्यों जलाया। तो चाणक पंडित ने कहा कि वो जो पहला दीपक था उसमें मैं राजकाज देख रहा था, मैं राजा का मंत्री हूँ, तो उस दीपक में राष्ट्र का राजा का धन व्यय होता है, उसमें जो घी लगता है उसमें राजा का पैसा जाता है राजकोष, और ये जो दीपक है ये मेरे वेतन का घी खाता है, इसमें मेरे वेतन का घी लगता है, तो मैं राजकीय वस्तु से अपना काम नहीं कर सकता, तो आपके साथ मैं प्राइवेट मीटिंग करूंगा इसलिए अपने वेतन का घी खर्च कर रहा हूं। इस तरह के लोग हुए हैं प्राचीन काल। हम लोगों को बहुत सावधानी से देखना चाहिए कि भगवान का पैसा कहीं मैं तो नहीं खर्च कर रहा हूं। ये बहुत बारीकी से देखने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत भारी बंधन लगेगा और भोगना पड़ता है। भगवान के इस आचरण से सीखना चाहिए। बहुत कुछ किया लेकिन नहीं लिया तो भगवान ने वर देकर विदा किया। तब मज्जन कर रघुकुल नाथा पूज पार्थिव नायो मात। तब गंगा जी के तट पर घाट से कुछ दूर जाकर भगवान स्नान किए लक्ष्मण जी और सीता जी स्नान कर चुके थे, क्योंकि वे लोग पहले उठे थे और भगवान मंत्री को समझाने में थोड़े उलझ गए, देर हो गई, तो भगवान स्नान किए। स्नान करके भगवान ने संध्या वंदन किया, पृथ्वी की पूजा किया, गंगा जी किया और संध्या वंदन किया। भगवान ने शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्यों को स्नान के बाद अवश्य संध्या वंदन करना चाहिए। सियसुर सरी कहई करजोरी मात मनोरथ पूर्व मोरी। अब सीता जी गंगा जी से विनय करने लगी, गंगा जी की पूजा की फूल से, और इसके बाद माता गंगा से सीता जी हाथ जोड़ करके मांग रही है। सियसुर सरी कहई करजोरी मात मनोरथ पूर्व मोरी। हे माँ गंगा, आप मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। क्या मनोरथ था गंगा जी का, सीता जी का? कहती हैं, पति देवर संग कुशल बहोरी आई करो जे ही पूजा तोरी। हे माँ गंगे, आपके चरणों में मैं यह भीख मांगती हूँ आंचल पसार कर कि मैं जैसे आज जा रही हूँ वन में तो उसी तरह अपने देवर और पति के साथ में कुशल अयोध्या लौटू, वन में कोई संकट न आवे। ये प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। यदि सीता जी स्वयं मूल लक्ष्मी हैं, भगवान की प्रिया हैं, गंगा जी इनकी दासी हैं, फिर भी जैसे लोक में प्रचलित है गंगा जी से आशीर्वाद मांग रही। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह देवताओं का आशीर्वाद मांगे, कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। गंगा जी की पूजा हो रही है और सीता जी आशीर्वाद मांग रही है। खास करके परिवार वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो ब्राह्मणों का देवताओं का आशीर्वाद अवश्य मांगे, बच्चे की रक्षा के लिए, पत्नी की रक्षा के लिए या धन की रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए आशीर्वाद बहुत जरूरी है। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं पूर्ण हूं और हमको क्या किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता है। पतिदेवर संग कुशल बहोरी आई करो जही पूजा तोरी। एक बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो सीता पर बहुत बड़ा संकट पड़ा है, उसके पति का राज्य छीन कर और उसे वन में भेजा जा रहा है। बेचारी सीता वन में जा रही जहां केवल संकट ही संकट है, कभी भी कोई राक्षस खा सकता है, कहीं कोई सांप दंस सकता है, कई प्रकार की दिक्कतें हैं, और जैसे हम लोग यात्रा में चलते हैं तो कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, चार आदमी साथ में जा रहे हैं तो एक दो आदमी की मृत्यु हो जाती है, कभी कभी पूरा ग्रुप ही मर जाता है, ये सब देखा जाता है ना। जबकि सेफ यात्रा
में जा रहे हैं। रेलवे विभाग कहता है विश का शुभ जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपके मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं, फिर भी विघटन हो जाता है। पग पग में खतरा है इस संसार पर, इसीलिए आशीर्वाद चाहिए बड़े लोगों का। तो गंगा जी से आशीर्वाद मांगा जा रहा है उस बिहार खतरनाक वन में कि मैं लौटूं सुख से, मेरे देवर ठीक से लौटे, मेरे पति देव ठीक से लौटे, मैं सुरक्षित लौट। बेचारी पर बहुत संकट आ गया था, तो चोरी चली गई थी वन में, लेकिन यह कहिए कि गंगा जी की कृपा से लौट आई। लंका में चली गई थी। इस तरह के और भी अनेक संकट आए, जब राक्षसों से भेंट हुई राम लक्ष्मण की, लेकिन इन दोनों ने उनका वध कर दिया। तो जीवन में तो संकट आता ही रहेगा, जब बड़ों का आशीर्वाद रहता है तो संकट चुटकी बजाते ही समाप्त। आशीर्वाद चाहिए संकट। दुर्गा जी का आशीर्वाद रुक्मिणी जी मांगती हैं, सीता जी मांगती हैं, आप कृपा कीजिए हमें कृष्ण वर मिले, रुक्मिणी जी पूजा करते समय मांगती हैं। तो पतिदेव वर संग कुशल बहोरी, आई करो जय पूजा तोरी, सुनिश्चिय विनय प्रेम रस सानी, भैतव विमल बारी बरबानी। जब सीता जी इस तरह से विनय कर रही थी तो गंगा जी के लहरों से आवाज निकली मनुष्य की भाषा में, बिल्कुल सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तो प्रभाव जग विदित न के, हे राम की प्रिय तुम्हारा प्रभाव इस संसार में किसको विदित नहीं है, लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तो इससे वही सब सिद्धि कर जोरे, सारे लोकपाल तुम्हारे कृपा कटाक्ष की अपेक्षा करते हैं, आशा में रहते हैं, और सारी सिद्धियां तुम्हारी सेवा करती हैं, और तुमने जो हमसे विनय किया कि हमको तुमने बढ़ाई दिया है, लेकिन फिर भी देवी मैं आशीर्वाद दूंगी, तदपि देवी मैं देव अशीषा, सफल होन हित निज बागीसा, अपनी वाणी को सफल करने के लिए मैं तुमको आशीर्वाद दूंगी। गंगा जी कहती हैं अपनी लहरों से, गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, पूजी सब मन कामना, सुजस रही जग छाय। हे देवी, तुम अपने प्राण प्रियतम श्री राम और अपने देवर लक्ष्मण के साथ बिल्कुल कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा वन में। गंगा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाया, और तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, और तुम्हारा यश सारे जगत में छाएगा पति का अनुगमन करने के कारण। तुम जो वन में आई हो अयोध्या का सुख छोड़कर, इसके चलते पतिव्रता स्त्रियों में तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ स्थान रहेगा, सब जगह प्रशंसा होगी तुम्हारी, और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति तुम्हारे देवर सकुशल अयोध्या लौटेंगे। गंगा जी बहुत प्रसन्न हो गई, जीवन में आश्वासन हो गया, गंगा जी कूल हैं, गंगा जी का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार सीता जी प्रसन्न हो गई, और मन में जो एक धकधकी थी, संकट की आशंका थी, वो मिट गई। गंगा जी का आशीर्वाद विफल नहीं हो सकता है, मनुष्य की भाषा में गंगा जी ने कहा था। तो इस प्रकार भगवान वन में जा रहे हैं, तो आगे हम और वर्णन करेंगे किस प्रकार पथ में भगवान गए और चित्रकूट पहुंचे, उनके चित्रकूट पहुंचने तक की लीला फिर आगे कही जाएगी। इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को बहुत नम्र भाव से देवताओं का और वैष्णवों का आशीर्वाद चाहिए, कामना करनी चाहिए कि हमें आशीर्वाद प्राप्त, अपने धन अपनी बुद्धि अपने बल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आशीर्वाद से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, ग्रंथों के द्वारा ये सब बातें सिद्ध होती। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण।